कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बन चली जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्रशास्त्री श्रीमद्ष डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय नित्यलीला प्रोफेसर कॉन्फाउंडर आचार्य शिवदी होलवर जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तिवृंद की जय श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय श्री श्री गौनताय भगवान की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय समवेत भक्त वृंद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू सिंपल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिंपल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिंपल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगन ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंध अध्याय 16 परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह किया श्लोक संख्या 32 और 33 तो 32 में पढ़ रहा हूँ और 33वां सब लोग एक साथ पढ़ेंगे ब्रह्मादयो बहुतिथं यदपांगमोक्ष कामस्तपः समचरन् भगवत् प्रपन्नम् शास्त्री स्ववासमरविन्द वनम् विहाय यत्पाद सौभाग्यमलम् भजते नुरक्ता आप मेरे पीछे बोलिए तस्याहमम्ज कुलिशां कुशकेतु केत श्रीमत्पदेर भगवतहां समलंकृतांगी త్రీనత్య రోచ ఉపలంభ్యతతో విభూతే లోకాన్ సమామ్య సృజదన్ విస్మయతిం తదంతే. తస్యాహమంజ కులిశాం కుశకేతు కేతః శ్రీమద్పదైర్భగవతః సమలంకృతాంగీ త్రీనత్య రోచ ఉపలభ్యతతో విభూతే లోకాన్ సమామ్య సృజన్ ఉత్స్మయతిం తదంతే. తస్యాహమంజ కులిక్షాం కుశకేతు కేతః శ్రీమత్పదైర్భగవతః సమలంకృతాంగీ త్రీనత్య రోచ ఉపలంభ్యతతో విభూతే లోకాన్ సమామ్య సృజన్ ఉత్స్మయతిం తదంతే. సందార్ బోలియే బ్రహ్మా ఆదయః. బ్రహ్మా జసే దేవతా బహుతిథం అనేక దినో తక్ యత్ లక్ష్మీదేవీ కా అపాంగ మోక్ష కృపా కటాక్ష కామాః కామనా కర్నే వాలే తపః తపస్యా సమచరణ సంపన్న కర్తే హువే భగవత్ భగవాన్ కీ ప్రపన్నాః శరణాగత తా వహ లక్ష్మీ శ్రీహి లక్ష్మీజీ స్వవాసం అప్నే ధామ్ కో అరవింద వనం కమలో కే వన్ కో విహాయ ఛోడ్కర్ యత్ జిస్కా పాద పావ్ స్వభగం కళ్యాణమయ అలం నిసంకోచ భావ సే భజతే పూజతా హై అనురక్తా ఆకృష్ట హుయీ తస్య ఉస్కా అహం మే అబ్జ కమల్ పుష్ప కులిశ వజ్ర అంకుశ హాథీ హాకనే కా దండ కేతు ఝండా కేతః చిన్న శ్రీమత్ సమస్త ఐశ్వర్య స్వామీ పదః పావో కే తలవో సే భగవతః భగవాన్ కా సమలంకృత అంగీ ఇస్ తరహ సే సజ్జిత్ శరీర వాలీ త్రీన్ తీన్ అతి ఏక్ సే ఏక్ బఢకర్ అరోచే సుందరతా పూర్వక్ అలంకృత ఉపలభ్య ప్రాప్త కర్కే తతః తత్పశ్చాత్ విభూతిం విశిష్ట శక్తియోం కో లోకాన్ లోకోం కో సహ ఉన్హోనే మాం ముజ్కో వ్యసృజత్ త్యాగ్ దియా ఉస్ స్మృతిం గర్వ కా అనుభవ కర్తే హువే తత్ అంతే అంత మేం. అనువాద్ మేరే పిచ్చే బోలియే. సౌభాగ్య కీ దేవీ లక్ష్మీ జీ జిన్కీ కృపా కటాక్ష కే లియే బ్రహ్మా జసే దేవతా తరసా కర్తే థే ఔర్ జిన్ కే లియే వే దిన్ మే అనేక బార్ భగవాన్ కే శరణాగత హోతే థే కమల్ వన్ కే అప్నే వాస స్థాన్ కో త్యాగ కర్ భగవాన్ కే చరణ కమలో కీ సేవా మే సంలగ్న హుయీ థీ ముఝే వే విశిష్ట శక్తియాం ప్రాప్త హుయీ థీ जिनसे मैं ध्वजा, वज्र, अंकुश तथा कमल चिन्हों से जो भगवान के चरण कमलों के चिन्ह है अलंकृत होकर तीनों लोकों की संपत्ति को परास्त कर सकती थी। लेकिन अंत में जब मैंने अनुभव किया कि मैं कितनी भाग्यशालिनी हूँ, तब भगवान ने मुझे त्याग दिया। हाँ, तो तात्पर्य सुनने के पहले इस श्लोक को हम फिर से समझेंगे। बहुत लंबा अनुवाद है इसका। आप जानते हैं कौन कह रहा है? पृथ्वी देवी। पृथ्वी देवी कह रही हैं। किस रूप में है? गाय के रूप में है। किससे कह रही हैं? हाँ, धर्म देवता से बोल रही हैं, जो बैल के रूप में है ना। और विषय क्या है? कष्ट। कष्ट के विषय में। हाँ, धर्म ने पूछा है पृथ्वी से कि तुम्हें किस बात का कष्ट है, तो अपना कष्ट बतला रही हैं पृथ्वी देवी। तो इस श्लोक में ये दो श्लोक हैं लगातार जिनमें पृथ्वी देवी ने अपना कष्ट बताया। तो इन दो श्लोकों में पृथ्वी देवी अपना कष्ट बता रही हैं किस प्रकार से, कि भगवान ने मुझे त्याग दिया है, भगवान ने मुझे त्याग दिया है ना, ये कष्ट है उनका। लेकिन फिर भगवान का इसमें दोष नहीं है, भगवान कितने महान हैं ये बता रही हैं पृथ्वी देवी, और अपना दोष बतला रही हैं। ये है भक्त का जो लक्षण है वो ये है कि कोई भी अगर दुर्घटना हो या अनिष्ट हो तो उसमें वो भगवान का गुण ही देखता है और दोष देखता है अपना। तो अपना क्या दोष है पृथ्वी देवी बताती हैं, मेरा क्या दोष है? भगवान ने मुझे त्याग दिया, तो भगवान का दोष नहीं है, भगवान के दुगुण है। अपना क्या दोष बताती हैं? कौन बताएगा? हाँ, मुझे अहंकार हो गया। अंत में जब मैंने अनुभव किया कि मैं कितनी भाग्यशाली हूं, तो भगवान ने मुझे त्याग दिया, मुझे अहंकार हो गया है ना। उसमय तीन गर्व का अनुभव करते हुए उसमय तीन तो भगवान ने त्याग दिया। और भगवान का गुण बतला रहे हैं पृथ्वी देवी, क्या? कि लक्ष्मी जी उनके चरणों की सेवा करती हैं। जिन लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए बहुत समय तक ब्रह्मा शिव जैसे बड़े बड़े देवता तपस्या करते रहे और भगवान की बार बार शरण लेते रहे, उनकी कृपा चितवन पाने के लिए, कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी जी की। वे लक्ष्मी जी अपने कमल मलन को त्याग करके बिना भगवान के बुलाए, देखो भगवान की कितनी महिमा, कि ब्रह्मा शिव देवता जो है ना तपस्या करते रहते हैं तो भी उन पर तो कृपा नहीं करते लक्ष्मी जी, और भगवान लक्ष्मी जी को कोई चिंता नहीं करते, उनको कोई इच्छा नहीं लक्ष्मी को प्राप्त करने की, तो भी लक्ष्मी जी अपने स्थान को छोड़ करके क्या करते हैं? भगवान के चरणों की सेवा करती हैं। और वे भगवान के जो चरण हैं इनमें क्या चिन्ह है? ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल। इसमें क्या लिखा है? अब्ज का मतलब कमल और कुलिस का मतलब वज्र, अंकुश जो हाथी जो हाथी के ऊपर बैठा महावत होता है वो अंकुश से चलाता ना हाथी को, तो अंकुश। और केतु, केतु का मतलब ध्वजा। तो इनके चिन्हों से चिन्हित भगवान के चरण कमल। तो मुझ पे जो है जब भगवान के चरण कमल पड़ते थे तो मैं जो है सौभाग्यशाली हो गई और तीनों लोगों की संपत्ति को मैंने परास्त कर दिया। जब पृथ्वी पर भगवान के चरण कमल थे तो पृथ्वी देवी इतनी सौभाग्यशाली हो गई कि दूसरे जो लोक हैं ब्रह्मांड के जो है जितने भी लोक हैं उन सबसे ज्यादा समृद्ध हो गई पृथ्वी देवी। तो फिर पृथ्वी देवी कहते हैं कि मुझे इस बात का गर्व हुआ तो भगवान ने मुझे त्याग दिया, तो शोक कर रही हूं मैं कि भगवान मुझे त्याग दिया है। लेकिन कारण क्या? हाँ, मेरा दोष, कारण है मेरा दोष। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की, संसार का सौंदर्य तथा ऐश्वर्य भगवान की कृपा से ही बढ़ सकता है, किसी मानव कृत योजना से नहीं। हाँ, मनुष्य कितनी भी योजना बनाए, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान की कृपा से संसार का सौंदर्य और ऐश्वर्य बढ़ सकता है, और भगवान बिना प्रयास के, मतलब केवल भगवान के चरण कमल के स्पर्श मात्र से ही इस पृथ्वी का ऐश्वर्य और सौंदर्य बढ़ गया। और लोग जो है आजकल जितना अधिक प्रयास करते हैं ऐश्वर्य सौंदर्य बढ़ाने के लिए, उतना उल्टा हो रहा है। जैसे फैक्ट्रियां हैं तो बड़ी सुंदर सुंदर चीजें बनाने के लिए फैक्ट्रियां बनी हैं, और ये फैक्ट्रियां क्या करती हैं? गंदी हवा और गंदा पानी सब जो है ना गंदा करती हैं, है कि नहीं? तो जितना जो है ना इसमें सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है आजकल के वैज्ञानिकों के द्वारा, उतना उल्टा हो रहा है, उतना ही ज्यादा गंदा हो रहा है। शहर सबसे ज्यादा गंदे हैं, क्योंकि शहरों में ही सबसे ज्यादा प्रयास किया जाता है क्या? सुंदरता बढ़ाने का, है कि नहीं? और गांव है वो ज्यादा सुंदर है शहर की तुलना में, क्योंकि वहां कोई प्रयास नहीं किया जाता है। और गांव में लोग जो है कोई भगवान का नाम भी लेते हैं, अशिक्षित होने के कारण वे सौभाग्यशाली हैं कि वे भगवान का नाम लेते हैं और कुछ कथा कीर्तन करते हैं, रामायण महाभारत है? कभी जो ना कुछ पाठ करते हैं, अध्ययन करते हैं, चर्चा करते हैं, तो वो ज्यादा सुंदर है। वहां जो ना सुंदरता और शोभा है, और शहरों में जो है भगवान को भूल करके सुंदरता और ऐश्वर्य बढ़ाने का जितना प्रयास किया जा रहा है उतना उसका उल्टा परिणाम हो रहा है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि नोट करने लायक बात है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर विद्यमान थे तो उनके चरण कमल के विशिष्ट चिन्ह धूलि पर अंकित होते थे। अब ये एक बहुत बड़ी घटना है, ये भगवान के चरण कमल के चिन्ह जो है धूल पर अंकित होते हैं, तो ये बहुत बड़ी घटना है ये। वैसे कोई सामान्य प्रकार से अगर सोचे तो सोचेगा कि इसमें क्या खासियत, भगवान ने जो ना और कई लीलाएं की हैं तो उनका तो महत्व है, ये भगवान के चरण चिन्ह पृथ्वी पर जो अंकित होते थे ये कोई खास घटना तो नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी इसको बहुत खास बता रहे हैं, क्यों? पृथ्वी देवी बता रही हैं कि बहुत खास घटना है कि भगवान के चरण चिन्ह पृथ्वी पर अंकित होते थे धूल पर। जिस विशेष कृपा के कारण सारी पृथ्वी यथासंभव भरी पूरी रहती थी, क्योंकि इतने से ही जो है ना भगवान के चरण चिन्ह पृथ्वी पर पड़ रहे हैं, इतने से ही जो है ना क्या होता है, सब प्रकार के ऐश्वर्य प्रकट होते हैं पृथ्वी में। पृथ्वी को जो है ना एक नाम दिया गया है, रत्न गर्भा, उसके गर्भ में सब प्रकार के रत्न हैं, तो सब प्रकार के रत्न निकलते हैं पृथ्वी के गर्भ से। प्रभुपाद लिखते हैं, दूसरे शब्दों में नदियां, पर्वत, समुद्र, वन और खाने जो मनुष्यों तथा पशुओं की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली हैं, अपने अपने कर्तव्यों को ढंग से पूरा कर रही थीं। ये सब पृथ्वी के हिस्से हैं, समुद्र, नदियां, वन और पर्वत और खाने, तो इनसे प्रचुर जो है ना आवश्यकताओं की पूर्ति होती मनुष्यों की बिना कुछ किए। सोचिए कि कितना जो है, मतलब ये गहरा विज्ञान है, कितना गहरा विज्ञान है। ऐसा कभी होता है ना कि जरा सा स्विच है, जरा सा स्विच दबाया और पूरी लाइट मंदिर की जल गई, है ना? और स्विच जरा सा है, और कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे क्षेत्र की लाइट जलती है, जरा से सोच दबाने से, है ना। उसी प्रकार से भगवान का चरण जो है ना क्या है, जरा सा स्विच, और उनका जो ना स्विच जो ना ऑन होता है, पृथ्वी में पड़ता है और नदियां समुद्र पर्वत और खाने ये सब प्रचुर मात्रा में है, सामग्री उत्पन्न करते हैं भगवान के जरा जरा से पैर, छोटे से पैर हैं जिनको कोई महत्व नहीं समझता। कौन सोचता है कि इनका कुछ महत्व है। भगवान जब रखते हैं पैर अपने जमीन में तो वो भी नहीं सोचते कुछ, भगवान भी नहीं सोचते, लेकिन सोचता कौन है इसको, पृथ्वी देवी, पृथ्वी देवी सोचती हैं, है ना। तो ये जो है प्रभुपाल लिखते हैं, अतएव संसार की सारी समृद्धि ब्रह्मांड के तीनों लोकों से बढ़कर थी। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह पृथ्वी पर भगवान से सदैव कृपा बनाए रखने की याचना करे, जिससे हमें उनके अहेतु की कृपा प्राप्त हो और हमें जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त हो, जिससे हम सुखी रहें। तो प्रभुपाल जी क्या कहते हैं कि मनुष्य का ये कर्तव्य है क्या, कि वो भगवान से प्रार्थना करे कि ऐसी कृपा हमेशा बनाए रखें। कैसी कृपा, कैसी कृपा है, हाँ, कि अपने पैर हमेशा रखें पृथ्वी पर। मनुष्य को ये चाहिए कि भगवान से प्रार्थना करे, जैसे कुंती देवी ने भी प्रार्थना की थी कि आप जा रहे हैं तो हस्तिनापुर की भूमि में जो है ना अब बहुत बड़ा जो है ना ये घाटा होने वाला है। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर शहर का जो है ना एक बहुत बड़ा नुकसान है, आप जा रहे हैं क्यों, क्योंकि हस्तिनापुर की जो भूमि है आपके चरण चरणों से जो शोभायमान थी अब जो है ना उसकी शोभा नहीं रहेगी, है ना। तो कुंती देवी जो है ना मतलब असली मनुष्य का कर्तव्य निभा रही है कि प्रार्थना करती है। भगवान को विवश तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन प्रार्थना फिर भी की जा सकती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वो पृथ्वी पर भगवान से सदैव कृपा बनाए रखने की याचना करे, जिससे हमें उनकी अहेतु की कृपा प्राप्त हो। भगवान की अहेतु की कृपा है, तो भगवान अपने चरण रखते हैं पृथ्वी में तो उसमें कोई हेतु नहीं है, भगवान को क्या मिलने वाला है कि नहीं, तो अहेतु की कृपा कहलाती है। कभी कभी कोई कृपा करता है तो सहेतु की कृपा होती है। सहेतु की क्या मतलब, बदले में हम भी चाहते हैं कि भाई आप भी हाँ कुछ मेरा समर्थन करोगे, कुछ मेरी सहायता करोगे, है कि नहीं। तो मैं आप पर कृपा करता हूँ तो आपसे कुछ वोट लेना चाहता हूँ, कुछ समर्थन लेना चाहता हूँ, है कि नहीं। लेकिन भगवान की कृपा तो हमेशा अहेतु की है, क्योंकि भगवान तो अपने आप में पूर्ण है, उन्हें किसी से कुछ जरूरत नहीं है, है ना। तो अहेतु की कृपा के लिए प्रार्थना करे। तो इससे क्या होगा, हमें जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी, जिससे हम सुखी रहें। आगे प्रभुपाल लिखते हैं, कोई ये प्रश्न कर सकता है कि जब पृथ्वी पर अपना कार्य पूर्ण हो जाने पर भगवान पृथ्वी छोड़कर अपने धाम चले जाते हैं तो फिर हम उन्हें किस तरह रोक सकते हैं, ठीक है ना। देखिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने प्रश्न उठाया, क्योंकि हो सकता आप प्रश्न ना उठाओ, तो प्रभुपाद ने प्रश्न उठाया, और प्रश्न उठाने से जो बात है वो ज्यादा रोचक हो जाती है। क्या प्रश्न उठाया प्रभुपाद ने, क्या प्रश्न उठाया, कि हम भगवान को कैसे विवश कर सकते हैं, है ना। क्योंकि तो भगवान जिस कार्य के लिए आए, मैं तो पृथ्वी का भार उतारना था तो उन्होंने उतार दिया, देवताओं का कार्य पूरा कर दिया, है कि नहीं। तो वो तो चले गए भगवान, तो हम भगवान को कैसे रोक सकते हैं। तो उत्तर होगा, अब प्रभुपाद उत्तर देते हैं कि भगवान को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, भगवान सर्वव्यापी होने के कारण हमारे चाहने पर हमारे बीच उपस्थित हो सकते हैं। तो जब भगवान है पृथ्वी पर तो पूरी पृथ्वी का जो है ना मंगल होता है, लेकिन अगर जो है अगर जब भगवान चले गए हैं तो पृथ्वी का जितना हिस्सा, पृथ्वी के जितने हिस्से में लोग जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं उतने हिस्से में क्या होगा, आवश्यकताएं पूरी होंगी, उतना हिस्सा जो ना वैकुंठ बन जाएगा। जब भगवान होते हैं साक्षात तो फिर तो पूरी पृथ्वी ही समझो कि मतलब प्रचुर संपत्ति वाली हो जाती है। जब भगवान नहीं है तो कोई अगर व्यक्ति सामूहिक रूप से अगर प्रार्थना करता है भगवान से, तो सामूहिक रूप से उतना जो ग्रुप है, उतना जो स्थान है वो संपन्न होता है। और कोई व्यक्तिगत रूप से अगर प्रार्थना करता है तो उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं पूरी होती हैं, बाकी जो ना त्राही त्राही मची रहेगी। तो भगवान में जो है सब जो ना गुण है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, यदि हम श्रवण कीर्तन स्मरण आदि द्वारा उनकी भक्ति में अनुरक्त हैं तो वे सदैव हमारे साथ रह सकते हैं, क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं। तो देखो, जैसे कि पूरी दिल्ली में पानी की कमी है, तो कृष्ण प्रिया प्रभु कई बार बताते हैं इस बात को कि पूरी दिल्ली में पानी की कमी है और यहाँ पर जो है ना कितना पानी है। तो क्यों? हाँ, भगवान का प्रभाव। जितने क्षेत्र में जो है भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण होता है, उतने क्षेत्र में क्या है, कोई कमी नहीं होती, सब आवश्यकताएं पूरी होती हैं। और बाकी क्षेत्र में क्या है, अभाव है, कमी है। तो इसका कारण क्या है कि वो भगवान को याद नहीं करते हैं, भगवान के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो जो भगवान के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं उनको अभाव ही अभाव मिल रहा है, और जो भगवान के आदेशों का पालन कर रहे हैं उनको सब प्रकार का जो सुख सुविधा प्राप्त हो रही है सब प्रकार की। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं जिससे उनका संबंध ना हो। किसका? भगवान का। हमें चाहिए कि हम इस संबंध को ढूंढ निकालें और अपराध रहित सेवा द्वारा उनसे जुड़ जाएं। यहां प्रभुपाद जी जोर दे रहे हैं क्या, अपराध रहित सेवा। आप थोड़ी सेवा करो लेकिन अपराध से रहित हो, है ना, तो हम जुड़ सकते हैं भगवान से। जैसे गीता में भगवान का स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते सु अल्पम। सु का मतलब अच्छा हो और अल्पम माने थोड़ा, चाहे थोड़ा सा धर्म का आचरण किया जाए लेकिन सु हो यानी सुंदर हो यानी अपराध रहित हो। तो त्रायते महतो भया, तो महान भय से रक्षा हो जाएगी। तो अपराध से बचने का जो है ना प्रभुपाद ने बहुत महत्व बदला है, और हम देखते हैं तात्पर्य में तीन बार प्रभुपाद ने इसकी चर्चा की है कि अपराध से बचना चाहिए। इसी तात्पर्य में तीन बार प्रभुपाद ने चर्चा की है, नाम के अपराधों से बचना चाहिए, नाम के अपराधों से बचना चाहिए, तीन बार चर्चा की है। तो पहली ये पहली बात प्रभुपाद बता रहे हैं, अपराध रहित सेवा द्वारा उनसे जुड़ जाए। हम उनके दिव्य शब्द उच्चारण द्वारा उनसे जुड़ सकते हैं। शब्द दिव्य शब्द क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन शर्त क्या है, अपराध रहित। हम लोग रोज 10 नाम अपराध बोलते हैं तो बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। नहीं तो क्या है, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबुतन पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। तो ये बहुत जरूरी है। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान एक ही हैं, और जो कोई निरअपराध भाव से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है उसे तुरंत अनुभूति होती है कि भगवान उसके समक्ष उपस्थित हैं। तुरंत, तुरंत का मतलब बिना विलंब के, है ना, तुरंत अनुभूति होती है भगवान उसके समक्ष उपस्थित हैं। तो फिर अभाव कहां है, अभाव कहां रहेगा, फिर कष्ट कहां रहेगा, तुरंत अनुभूति होगी अगर अपराध से हम बचे। तो मुख्य बात अपराध से बचने की है, क्योंकि हरि नाम तो कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो जैसे बृहन्नारदी पुराण में एक श्लोक है, हरे नाम है वे केवलम कलो नास्त्यव 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 गित्रिंता, हरि नाम तीन बार कहा गया है, है ना। तो वो तो हम कर रहे हैं, तो अब दूसरा जो उपदेश हमारे लिए है वो क्या है कि अपराध से बचो, अपराध से बचो, अपराध से बचो, तीन बार नाम अपराध से बचो, नाम अपराध से बचो। यदि तात्पर्य प्रभु तीन बार इसकी चर्चा कर रहे हैं। अभी दूसरी बार प्रभुपाद ने कहा है कि निरअपराध, भाव से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो उसे तुरंत अनुभूति होती है कि भगवान उसके समक्ष उपस्थित हैं। अब जैसे एक उदाहरण प्रभुपाद ने दिया है रेडियो ध्वनि, यहां तक कि रेडियो ध्वनि के स्पंदन से हम व्यक्ति की आंशिक अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं और ब्रह्म ध्वनि और दिव्य ध्वनि को फिर से उच्चरित करके हम निश्चय ही भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। जैसे रेडियो की ध्वनि या टेलीफोन, तो टेलीफोन में आप बात करते हो है कि नहीं, तो मतलब काफी हद तक उसी प्रकार है जैसे आमने सामने आप मिल रहे हो है कि नहीं। जब आप फोन पर किसी से बात करते हो है ना, तो बहुत कुछ जो है ना ये आवश्यकता पूरी हो जाती है जैसे आप उनसे मिले है कि नहीं, बहुत कुछ हो जाता है। तो इसी प्रकार से दिव्य नाम के कीर्तन से भी जो ना भगवान की उपस्थिति का जो है ना आप लाभ उठा सकते हो, जैसे फोन पर या रेडियो रेडियो ध्वनि से आप अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभुपाद इसका उदाहरण देते हैं इस श्लोक में, जबकि प्रत्येक वस्तु कली के कलमश से दूषित है, शास्त्रों का उपदेश है तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी यही उपदेश दिया है कि भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन से हम कलमश से रहित हो सकते हैं और ब्रह्म पद तक उठकर भगवत धाम जा सकते हैं। तो शास्त्र से भी ये बात पुष्ट हो रही है और चैतन्य महाप्रभु ने भी पुष्ट की है। किसी बात को जो ना अगर निश्चित करना है तो वो पुष्ट होने की शास्त्रों से और साधु और आचार्य, सात साधु आचार्य तीनों से पुष्ट होने की। तो चैतन्य महाप्रभु जो ना साधु और आचार्य सब कुछ है, तो इसलिए ये पुष्ट है, ये बात पुष्ट है कि भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन से हम कलमश से रहित हो सकते हैं और ब्रह्म पद तक उठकर भगवत धाम जा सकते हैं। फिर रूपा लिखते हैं, भगवान नाम का कीर्तन करने वाला निरपराध भक्त साक्षात भगवान के समान शुभ होता है और संसार भर में भगवत भक्तों के विचरण करने से सारे संसार के सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। जो भक्त हैं तो वे जो ना अगर विचरण करते हैं पूरे संसार में तो संसार के कष्ट दूर हो सकते हैं। मतलब जैसे भगवान विचरण करते हैं अपने पैरों से तो पृथ्वी शुद्ध होती है, उसी प्रकार से भक्ति भी जो है ना पृथ्वी को पवित्र करते हैं अपने चरणों से। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि भक्त के चरण और भगवान के चरण फिर एक ही हैं। पृथ्वी देवी जो शोक कर रही हैं तो पृथ्वी देवी का शोक दूर हो जाएगा अगर ऐसे शुद्ध भक्त भी पृथ्वी पर विचरण करें। तो ये प्रभुपाद बताते हैं, लेकिन निरअपराध भक्त जो है भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के प्रचार प्रसार द्वारा ही हम कलयुग के प्रभावों से बच सकते हैं। तो यहां प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो अभी तक प्रभुपाद जी ने अपराध की बात बताई कि अपराधों से बचना है। अब चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला है और 19वीं प्यार है, नहीं 19वां अध्याय है, प्यार संख्या 156 है। इसमें लिखा है, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े वा छिंडे तार सुखी जाए पाता। यदि कोई भक्त इस जगत में भक्ति लता का सेवन करते हुए किसी वैष्णव के चरणों में अपराध करता है तो उसके अपराध की तुलना उस पागल हाथी से की जाती है जो लता को उखाड़ कर उसे छिन्न भिन्न कर देता है। इस तरह लता की पत्तियां सूख जाती हैं। चैतन्य महाप्रभु उपदेश दे रहे हैं रूप गोस्वामी को। तो चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बताया कि भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है गुरु के द्वारा और फिर उस शिष्य की जिम्मेदारी हो जाती है कि उस बीज को आरोपित करे अपने हृदय की भूमि में और श्रवण कीर्तन के जल से सिंचन करें। लेकिन सिंचन करने करने सिंचन करते रहने के साथ साथ बहुत जरूरी है क्या है, इसकी रक्षा की जाए है ना। और रक्षा करना है जो सबसे पहला नाम का अपराध है वो वैष्णव अपराध है। तो उससे रक्षा करना है, क्योंकि वो भीष्म अपराध पागल हाथी के समान है। पागल हाथी अगर किसी वाटिका में घुस जाता है तो उजाड़ देगा, है? तो उखाड़ देता है। पागल हाथी लता को उखाड़ देता है, अगर उखड़ गई तो फिर तो दोबारा नहीं हो सकती, है कि नहीं? उखड़ने का मतलब जड़ से अगर उखड़ गई तो फिर तो जो ना सब परिश्रम जो ना बेकार हो गया। तो प्रभुपाद लिखते हैं, वैष्णव की संगति से मनुष्य की भक्ति भावना बढ़ती है। तादेर चरण से भी भक्ते सने बास, जन्म जन्म है ए अभिलाष। नरोत्तम दास ठाकुर अपना दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए बल देकर कहते हैं कि भक्त को चाहिए कि अपने पूर्ववर्ती आचार्य को प्रसन्न रखना ना भूले। गोस्वामी गणों का प्रतिनिधित्व गुरु द्वारा होता है। कोई भी व्यक्ति आचार्य परंपरा का दृढ़ता पूर्वक पालन किए बिना आचार्य नहीं बन सकता। जो सचमुच भक्ति में प्रगति करने का इच्छुक हो, उसे चाहिए कि अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की इच्छाओं को तुष्ट करे। ऐछै गोसाई जार मुई तार दास, उसे चाहिए कि अपने को आचार्यों के दास का दास समझे और इस भाव से वह वैष्णवों के समाज में रहे। तो आचार्यों के दास का दास समझे, आचार्यों के दास मतलब अपने जो सीनियर डिवोटी हैं, जो अपने वरिष्ठ भक्त हैं, तो उनका दास बनना। अब देखिए प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, ध्यान से सुनिए। किंतु यदि वह ये सोचने लगे कि मैं प्रौढ़ हो गया हूं और वैष्णवों की संगति से अलग रह सकता हूं, तो उसकी स्थिति बड़ी भयानक बन जाती है। है ना? तो कभी प्रचार के नाम पर भी हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अब हमको जो ना वैष्णवों की संगति करने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत बड़ा प्रचारक हो गया हूं, है ना? तो कभी जो ना फिर वो मतलब वैष्णवों की संगति करना जरूरत नहीं समझता है, आवश्यक नहीं है, है ना? तो इससे फिर बहुत खतरा है। रूपा लिखते हैं कि बहुत भयानक स्थिति है। पवित्र नाम के विरुद्ध अपराधों की व्याख्या आदि लीला में की जा चुकी है। विधि विधानों का परित्याग करके मनमाने ढंग से रहने की तुलना उस प्रमत्त हाथी से की गई है, जो बलपूर्वक भक्ति लता को उखाड़कर उसके खंड खंड कर देता है। इस तरह भक्ति लता मुरझा जाती है। तो भक्तों का संग ना करना यह भी एक अपने आप में अपराध है, अपने आप में अपराध है। दूसरी प्यार है आगे वाली, इसके तात्पर्य के ऊपर लिखते हैं, जब भक्ति लता बढ़ रही हो तो भक्त को चाहिए कि उसके चारों ओर बाढ़ बनाकर उसकी रक्षा करे। तो अब ये बाढ़ क्या है, भक्ति लता का बाढ़ क्या है, मतलब चारों तरफ जो घेरा है वो क्या है? नहीं, श्रवण कीर्तन तो जल है, श्रवण कीर्तन तो जल है, बाढ़ क्या है? चारों तरफ जो है ना बाढ़ समझते, घेरा, घेरा क्या है? हाँ, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि नवदीक्षित भक्त की रक्षा शुद्ध भक्तों का घेरा बनाकर करनी चाहिए, शुद्ध भक्तों के बीच में। हाँ समझे, वो घेरा है, आप हमेशा भक्तों से घिरे रहो, ये है बाढ़, आप समझे ना? तो हर भक्त को अपने को भक्तों के द्वारा घिरना चाहिए, इससे प्रमत्त हाथी को अवसर नहीं मिल पाएगा। प्रमत्त हाथी यानी वैष्णव अपराध को अवसर नहीं मिल पाएगा कि वो लता को नष्ट करे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, असत्संग त्याग ए वैष्णव आचार। वैष्णव का पहला कर्तव्य है कि वो अभक्तों की संगति त्याग दे। किंतु तथाकथित प्रौढ़ भक्त, तथाकथित मतलब अपने को समझता है कि मैं बहुत सीनियर हो गया हूं, शुद्ध भक्तों की संगति छोड़कर बहुत बड़ा अपराध करता है, कि बहुत बड़ा अपराध है। अब कोई कहे इसमें क्या अपराध है, इसमें क्या अपराध है? शुद्ध भक्तों की संगति छोड़ना बहुत बड़ा अपराध है, अपने को प्रौढ़ मानना, अपने को बहुत सीनियर मानना। क्योंकि प्रभुपाद लिखते हैं, जीव सामाजिक प्राणी है, हमको चाहिए समाज, कैसा? जैसे हम हैं वैसा हमें समाज चाहिए, है कि नहीं? तो अगर आप भक्त हैं तो आपको भक्तों के समाज की आवश्यकता है। जीव सामाजिक प्राणी है। अगर यदि कोई शुद्ध भक्तों की संगति त्यागता है तो क्या होता है, वह भक्तों की संगति करेगा क्योंकि आप सामाजिक हैं, है ना। असत्संग अभक्तों के संपर्क में आने और अभक्तिमय कार्यों में व्यस्त रहने से तथाकथित प्रौढ़ भक्त प्रमत्त हाथी रूप अपराध के चंगुल में आ जाता है। ऐसे अपराध से भक्ति लता में जो भी वृद्धि हुई रहती है वो उच्छिन्न हो जाती है। अतः लता के चारों ओर बाड़ लगाकर और विधि विधानों का पालन करके तथा शुद्ध भक्तों की संगति करके उसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि कोई ये सोचता है कि कृष्ण भावनामृत संघ में अनेक अनेक छद्म भक्त हैं, ये भी कई बार समस्या होती है, हमें लगता है भी कई लोग तो यहाँ बनावटी भक्त हैं, तो उसे सीधे गुरु की संगति करनी चाहिए और जो भी संदेह हो उसका निवारण गुरु से करना चाहिए। किंतु गुरु के आदेशों का तथा श्रवण कीर्तन के नियमों का पालन किए बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। तो ऐसी स्थिति में प्रभुपाद से कभी कभी चर्चा हुई कि ऐसे में क्या करें, अगर ऐसी हालत हो ये मंदिर के जो है ना अध्यक्ष भी अगर मान लीजिए कुछ अनुचित कार्य कर रहे हैं और मंदिर के अधिकारी भी अनुचित कार्य कर रहे हैं तो ऐसे में भक्त को क्या करना चाहिए। तो प्रभुपाद ने क्या आदेश दिया था कि इस्कॉन अगर नरक भी बन जाए तो भी इस्कॉन को नहीं छोड़ना, अगर आपको सुरक्षा मिलेगी तो इस्कॉन में ही मिलेगी, अगर इस्कॉन नरक भी बन जाए तो भी इस्कॉन को नहीं छोड़ना, है ना, क्योंकि यहां पर श्रवण कीर्तन की जो सुविधा है वो कहीं नहीं मिलने वाली है और श्रवण कीर्तन से आपको कोई मना नहीं करने वाला है। तो इसलिए प्रभुपाल लिखते हैं किंतु गुरु के आदेशों का तथा श्रवण कीर्तन के नियमों का पालन किए बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता, केवल मनोकल्पना से उसका पतन होगा। अपने मन की कल्पना करते रहो कि भाई हम तो ऐसे शुद्ध भक्त बन जाएंगे, तो वैसे शुद्ध भक्त बन जाएंगे, है ना। तो ये जो है ना प्रभुपाद लिखते हैं। अब 10 अपराधों की हम चर्चा करेंगे, चेतन चरितामृत के आदि लीला के 8वें अध्याय का पयार संख्या 24 है, जिसमें प्रभुपाद ने 10 अपराधों की चर्चा की है। तो हम लोग रोज 10 अपराध बोलते हैं तो आज हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। कृष्ण नाम करे अपराधे रे विचार, कृष्ण बलि ले अपराधी ना है विकार। हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते समय अपराधों पर विचार करना होता है, इसलिए केवल हरे कृष्ण का कीर्तन करने से कोई भाव दशा नहीं प्राप्त करता है। अपराधों पर विचार करना होता है, कभी कभी हम सोचते हैं अपराधों पर विचार करने की कोई जरूरत नहीं है, प्रभुपाद कहते हैं अपराधों पर विचार करना होता है, इसलिए हमें जो बड़ी सावधानी से 10 अपराध बोलने चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि हमारी जानकारी में या अनजान में भी अगर अपराध हो रहा है तो क्षमा करें और वो अपराध हमारा बंद हो, अपराध दूर हो, है ना। हमें प्रार्थना करनी चाहिए, इसलिए 10 अपराध हम जब बोलते हैं तो हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए अपने आप में कि उन अपराधों को हम समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, लेकिन वो अपराध जो है ना मतलब दूर हो। तो तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के पूर्व श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद के नामों का उच्चारण करना लाभप्रद है, सहायता करेगा। ये पंचतत्व मंत्र सहायता करेगा अपराधों से छूटने में, क्योंकि श्री कृष्ण चैतन्य तथा प्रभु नित्यानंद इन दो पवित्र नामों के उच्चारण से मनुष्य तुरंत भाव विभोर हो उठता है और यदि वो इसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है तो सारे अपराधों से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते समय 10 अपराधों से बचना चाहिए। पहला अपराध है क्या? पहला अपराध उन महापुरुषों की निंदा करना जो भगवान नाम का वितरण करने में लगे हुए हैं। शास्त्रों में चैतन्य चरितामृत अंत लीला अध्याय 7 पयार संख्या 11 में कहा गया है, कृष्ण शक्ति बिना ना है तार प्रवर्तन, भगवान से शक्ति प्राप्त किए बिना कोई हरे कृष्ण महामंत्र के पवित्र नामों का वितरण नहीं कर सकता, अतएव इस कार्य में लगे भक्त की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो भक्त भगवान के नाम के प्रचार में लगा हुआ है उसकी निंदा करना ये नाम का घोर अपराध है। क्यों? पद्म पुराण में लिखा है 10 अपराध जो बताए गए हैं, तो कारण क्या है कि नाम जो है ना इसको बहुत बड़ा अपराध मानता है। जो भक्त नाम का प्रचार कर रहा है उसकी निंदा करने में नाम बहुत बड़ा अपराध मानता है। क्यों? पद्म पुराण का कथन है, सताम निंदा नामनः परमम अपराधम वितुनते यथाख्यातिम यातम कथमु सहते तद्विगरिहाम। हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा का प्रचार करने में लगे महान संत पुरुषों की निंदा करना पवित्र नाम के चरण कमलों पर घोर अपराध है। कथमु सहते मतलब कैसे सहन करेगा नाम, क्योंकि नाम तो चेतन है। भौतिक संसार में कोई भी नाम होता है वो तो जल होता है कि नहीं, लेकिन जो भगवान का पवित्र नाम है तो वो तो पूर्ण चेतन है, चेतन रस विग्रह है ना। तो ये आप जब नाम उच्चारण कर रहे हैं तो ये जो पवित्र नाम है ये विचार करता है कि आप ऐसे व्यक्ति की भी निंदा कर रहे हैं साथ साथ जो भगवान के नामों का प्रचार कर रहा है, तो कैसे नाम सहन करेगा इस अपराध को। तो परमम अपराध है, मतलब परम अपराध है ये। तो प्रभुपाद लिखते हैं हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा के प्रचारक की आलोचना नहीं होनी चाहिए, यदि कोई ऐसा करता है तो वो अपराधी है। नाम प्रभु जो कृष्ण से अभिन्न है ऐसे निंदनीय कार्य को कभी सहन नहीं करेंगे, भले ही वो कितना बड़ा भक्त क्यों ना हो। चैतन्य भागवत में लिखा है कि ये नाम जो है ना ये नाम ही उसको नरक में ले जाएगा, ये नाम ही जिस नाम का वो कीर्तन कर रहा है और वैष्णवों का अपराध कर रहा है तो ये नाम ही उसको नरक में ले जाएगा। इतना कौन सोचता है? हम सोचते हैं अरे क्या है, करो जितना चाहो जो मर्जी चाहो करो, नाम से तो जो ना सब प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं, है कि नहीं। लेकिन ये जो अपराध है ये नाम सहन नहीं कर सकता, ये नाम ही उसको दंड देगा, ये नाम ही उसको नरक में ले जाएगा। कोई सोचे भाई नरक की यहां बात कहां से आ गई, हम लोग तो जो ना हमेशा भगवान का दर्शन करते हैं, यहां मंदिर में प्रसाद खाते हैं, फिर नरक की कहां बात आ गई। लेकिन ये नरक जो है ना बताया गया है, हो सकता है इस जीवन में भी वो नरक के समान स्थिति हो जाए, है कि नहीं। तो ये भी हो सकता है इस जीवन में भी नरक जैसी स्थिति हो जाए। हाँ, तो फिर दूसरा नाम अपराध क्या? दूसरा नाम अपराध शिव ब्रह्मादि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान या उनसे स्वतंत्र समझना। तो पद्म पुराण में लिखा है सेवस्य श्री विष्णु जय है गुण नाम आदि सकलम ध्या भिन्नम बसे सखलु हरि नामा हित करहा। इस भौतिक जगत में विष्णु का नाम सर्व मंगलदायक है, विष्णु के नाम रूप गुण तथा लीलाएं ये सभी दिव्य परम ज्ञान है, अतएव जो कोई भगवान के नाम रूप गुण या लीलाओं को भौतिक समझकर उनसे भगवान को पृथक करना चाहता है वो अपराध करता है। इसी प्रकार शिव जैसे देवताओं के नामों को विष्णु के नाम के तुल्य बताना अथवा शिव तथा अन्य देवताओं को ईश्वर के अन्य रूप मानकर विष्णु के तुल्य बताना भी निंदनीय है। तो ये भगवान के चरण कमलों पर दूसरा अपराध है ना, क्योंकि भगवान का नाम दिव्य है और भगवान से अलग नहीं है। जबकि शिव और ब्रह्मा आदि जो देवताएं हैं तो इनका जो शरीर है ये आध्यात्मिक नहीं पूर्ण रूप से, है ना। इसलिए जो नाम है उनका नाम और उनके रूप में अंतर है, लेकिन भगवान का क्योंकि पूर्ण आध्यात्मिक है, भगवान पूर्ण आध्यात्मिक है, इसलिए उनके नाम में और उनके रूप में उनके गुण में कोई अंतर नहीं है। अब तीसरा अपराध है क्या? हाँ, गुरु की अवज्ञा करना, उन्हें साधारण मनुष्य समझना। तीसरा अपराध है गुरु अवज्ञा अर्थात गुरु को भौतिक मानकर उसके उच्च पद से ईर्ष्या करना। तो ये तो हमेशा हम लोग सुनते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं चौथा अपराध क्या है? वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। तो श्रुति शास्त्र निंदनम चारों वेदों तथा पुराणों की निंदा करना ये चौथा अपराध है। तो ये तो खैर नहीं होता है, हम लोग जो है ना ऐसी संस्कृति में यहाँ पल रहे हैं कि ये अपराध नहीं होता है, इससे हम लोग बचे हैं। फिर पांचवा अपराध है हरि नाम निकल्पनम, भगवान नाम की महिमा को काल्पनिक समझना। तो काल्पनिक समझना, ये काल्पनिक है नाम की महिमा। और छठा अपराध है अर्थवाद, नाम की महिमा को अतिरंजित मानना। काल्पनिक समझना का तो मतलब है कि नाम की बिल्कुल महिमा नहीं है, ये पूरी कल्पना है। कोई व्यक्ति कहेगा कि अरे हरे कृष्णा में क्या है, ये तो वैसा ही है जैसे कोका कोला कहा है ना, ये तो कल्पना है, आप हरे कृष्णा को आप मानते हो। तो कोई व्यक्ति कुछ भी कल्पना से माने, तो ये तो पांचवा अपराध है ना। और छठा अपराध क्या है, अर्थवाद। अर्थवाद का मतलब अतिशयोक्ति करना कि भाई मानता तो है नाम की महिमा को, लेकिन कहता है कि भाई जितना है उतना नहीं है, ये तो अतिशयोक्ति है। अतिशयोक्ति का मतलब यही होता है कि जितना होता है उससे बहुत ज्यादा बढ़ा करके बोला जाता है ना। तो पांचवें में तो ये कि आप बिल्कुल नाम की महिमा नहीं मानते है ना, आप कहते हैं वही कल्पना है। तो और छठवें में नाम की महिमा मानते हो कि भाई कुछ तो पुण्य होता है, लेकिन इतना जो बताया गया है इतना नहीं है, ये अतिशयोक्ति कर दी है। लेकिन छठा अपराध जो हम लोग रोज बोलते हैं वो क्या है, भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। तो ये भी वही मतलब है कि जो नाम की महिमा बतलाई गई है उसे कम करके बतलाना। तो अर्थवाद का मतलब यही है कि नाम की जितनी महिमा बतलाई गई है उसे ना मानना। और यदि ऐसा कहा जाए कि ये अतिशयोक्ति है तो इससे वैदिक प्रमाण का खंडन होता है। तो इस चौथे अपराध से बचने के लिए कोई व्यक्ति ये शिकायत तो नहीं करता है, परंतु उस महिमा को कम करके बतलाता है। तो इस अपराध में व्यक्ति चौथा अपराध यानी शास्त्रों का खंडन ना करके अर्थ बदलता है तथा नाम की महिमा को कम करता है। प्रभुपाद जी ऐसे बता रहे हैं। तो हरदास ठाकुर के सामने गोपाल चक्रवर्ती ने कहा था कि नामाभास से अगर मुक्ति प्राप्त हो जाए है ना, तो उसने क्या कहा था, तुम्हारी नाक काट लूंगा अगर मुक्ति ना हुई, हरदास ठाकुर से कहा था है ना। तो उसकी ही नाक गल के गिर गई है ना। तो ये अपराध जो है ना, उसने ये माना था कि भाई नाम से जो है ना मतलब जरूर लाभ होता है। तो सामान्य लोग ऐसे सोचते हैं भाई धार्मिक हैं, हाँ भाई ये धार्मिकता है, अच्छा है, नाम का कीर्तन करना अच्छा तो होता है। लेकिन कोई व्यक्ति मतलब यही सोचता है, व्यक्तियों में यही सोचने की भावना होती है, प्रवृत्ति होती है कि इतना ज्यादा थोड़ी होगा, है कि नहीं। तो ये छठा अपराध है। फिर सातवां अपराध क्या है, हाँ, नाम के बल पर पाप करना। नाम लो बलाद्य से ही पाप बुद्धि ही शुद्धि, ये सोचकर कि हरे कृष्ण मंत्र सारे पाप कर्मों को नष्ट करने वाला है, अतएव पाप कर्म करके उन्हें नष्ट करने के लिए हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करना हरि नाम के चरण कमलों पर सबसे बड़ा अपराध है। कृष्ण बहुत अपराध है, जैसे अजामिल की कथा हम सुनते हैं तो फिर अगर हम ये सोचें कि भाई अजामिल ने ऐसा किया और अंत काल में उसने नारायण का नाम उच्चारण कर लिया तो बस ठीक है, हमको तो जो ना बहुत अच्छा ये लाभ मिल गया है, हम इसका लाभ उठाएं। तो अजामिल की तरह सब प्रकार के गलत कर्म करें और अंत काल में जो है भगवान का नाम उच्चारण कर लेंगे, है ना। तो ये जो ना बहुत बड़ा अपराध है। अजामिल से अपराध नहीं हुआ था, लेकिन नहीं, अजामिल से अपराध नहीं हुआ था। अजामिल अपने पुत्र को जब बोल रहा था तो ये नहीं सोच रहा था कि मैं भगवान के नामों का उच्चारण करके अपने पापों को दूर कर रहा हूं, है कि नहीं। तो इसलिए ये सौभाग्य की बात थी उसकी। जो भी हो, हम लोग ऐसा ना कभी सोचें कि इस तरह से नकल करें। फिर आठवां अपराध क्या है, हाँ, शुभ सकाम कर्म के समान समझना भगवान नाम के जप को। तो आठवें अपराध का वर्णन इस प्रकार हुआ है, धर्म व्रत त्याग होतादि सर्व शुभ है, क्रिया साम्यम अपि प्रमादः, हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन को धार्मिक अनुष्ठान मानना अपराध है। धार्मिक उत्सव मनाना, व्रत करना, वैराग्य लेना और यज्ञ करना, ये भौतिकतावादी शुभ कार्य है। हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन की तुलना कभी ऐसे भौतिकतावादी धार्मिक कार्यों से नहीं की जानी चाहिए। यह भगवान के चरण कमलों पर अपराध है। मतलब जो वेदों का कर्म कांड है तो वो किस लिए होता है? स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, भोग और ऐश्वर्यों की प्राप्ति के लिए होता है ना। तो कोई व्यक्ति अगर चाहे तो इससे लाभ उठा सकता है वैदिक कर्म कांड का, क्योंकि और कोई दूसरी विधि नहीं है। लेकिन अगर कोई कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहता है तो नाम की जो ना इतनी महिमा समझना ये अपराध है। और कोई व्यक्ति नाम की इतनी महिमा समझेगा तो उसको फिर उतना ही लाभ होगा, क्या स्वर्ग की प्राप्ति। तो इसलिए इसको अपराध बताया गया है। और ये बहुत बड़ा नुकसान है अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, है ना। तो इसलिए जो है अगर कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो इस अपराध से बचना चाहिए कि नाम की इतनी ही महिमा नहीं है कि भाई कर्मकांडों में जो बताया गया है उतना ही फल मिलेगा नाम के द्वारा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चाहता है तो नाम के द्वारा इतना भी वो लाभ प्राप्त कर सकता है। अच्छा, फिर नवा अपराध, अश्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। अश्रद्धाने विमुखे प्रसन्नमति यशोपदेश शिव नाम अपराध। ऐसे लोगों के बीच नाम महिमा का प्रचार करना अपराध है जिनमें बुद्धि ना हो या जिन्हें इस विषय में कोई श्रद्धा ना हो। ऐसे लोगों को हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन को सुनने का अवसर तो प्रदान करना चाहिए, किंतु प्रारंभ से ही उन्हें नाम की आध्यात्मिक महत्ता के विषय में उपदेश नहीं दिया जाना चाहिए। नाम का निरंतर श्रवण करने से उनके हृदय शुद्ध होंगे और तब वे नाम की दिव्य स्थिति को समझ सकेंगे। तो नवे अपराध से बचना चाहिए क्योंकि ये हो सकता है, क्योंकि हम लोग नाम का प्रचार करते हैं। तो नवे अपराध से बचना चाहिए। तो नवे अपराध से बचने के लिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि उनको नाम की दिव्य ध्वनि के सुनने का अवसर दिया जाए लेकिन नाम की महिमा ना बताई जाए, है ना। जैसे कि नारद जी ने जब रत्नाकर नाम के डाकू को कहा था मरा मरा बोलो, है ना, तो और कुछ नहीं बताया कि ये भगवान का नाम है, मरा मरा बोलो। क्यों? क्योंकि उनको क्या चाहिए था? उनको चाहिए था अपने पापों से छूटना, क्योंकि वो बहुत पाप किए हैं तो वो पाप का दंड नहीं भोगना चाहते हैं। उनको भगवान से कोई मतलब ही नहीं है, आप समझे ना। वो इतने पापी थे तो उनको जो भगवान में कोई श्रद्धा नहीं थी, तो उनको कहा कि मरा मरा बोलो। ये कहना कि वो राम राम नहीं बोल सकते थे ऐसी बात नहीं है। कभी कभी ये कहा जाता है कि भाई वो इतने पापी थे कि वो राम नाम नहीं बोल सकते, तो ऐसी बात नहीं है। कोई कितना भी पापी क्यों ना हो भगवान का नाम बोल सकता है। लेकिन नारद जी ने उनको जब कहा था कि मरा मरा बोलो, क्योंकि उनकी भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं थी, उनको भगवत प्रेम की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, वो समझते नहीं थे, है ना। तो पापों से ही छूटना था तो उन्होंने कहा कि तुम मरा मरा बोलो केवल, है ना। और आगे चल करके जब पापों से मुक्त हो गए तो उनको स्वयं जिज्ञासा हुई और फिर रामचरित्र उन्होंने नारद जी से ही श्रवण किया 100 श्लोकों में, और फिर उन्होंने रामचरित्र जो है ना, जो रामायण है वो 24,000 श्लोकों का लिखा वाल्मीकि रामायण के नाम से आदि काव्य। लेकिन पहले मरा मरा ही उनको बोला गया। तो नवा अपराध जो है ना ना हो इस कारण से नारद जी ने कहा मरा मरा बोलने के लिए। ये जैसे चीन में भी गिरधारी स्वामी बता रहे थे कि जब प्रचार करते हैं, है ना, तो वो हरे कृष्ण मंत्र ये नहीं बताते कि भगवान का नाम है, है ना। उनको जो है ना वो अगर भगवान की बात करेंगे तो हजारों की संख्या में लोग दूर भागते हैं चीन में, है ना। तो उनको तो कुछ जो है ना अभ्यास बताते हैं, जैसे आसन वगैरह सिखाते हैं कि भाई ये आसन करो, तो इसको जो ना वो सीखना चाहते हैं क्योंकि इससे शरीर के रोग दूर होंगे, शरीर की आयु बढ़ेगी, तो इसको सीखना चाहते हैं। फिर ये हरे कृष्ण मंत्र बताते हैं जाप करने के लिए तो मानसिक तनाव दूर होगा, ये कह करके कि ये जो ध्वनि है ये मानसिक तनाव दूर करेगी, ये बताते हैं। यदि बताते कि भगवान का नाम है ये, जिससे अपराध ना हो, है ना। तो हम भी जो ना किसी एमपी से कभी मिलने गए थे उनके ऑफिस में या उनका घर था वो, तो वो जो ना अपराध करने लगे, ये कृष्ण जो ना ये तो ऐसे हैं, राम तो ऐसे हैं, है ना, कृष्ण की निंदा करना शुरू कर दी, राम की निंदा करना शुरू कर दिया। तो हमने कहा कि देखिए हमारा तो ये टॉपिक ही नहीं, हमारा तो ये विषय ही नहीं है, हम तो आपसे कुछ चर्चा करने आए हैं कि जो ना ये इस संसार में हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमें क्यों कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। तो वो जो है ना फिर बहस करने लगे कि इसने इसको किसने देखा है। तो फिर हमने कहा ठीक है अब हम जा रहे हैं। तो बोले आप तो जो है ना छोड़ के भाग रहे हो, मैदान छोड़ के भाग रहे हो। तो हमने कहा कि देखिए हमारी एक ही प्रार्थना है कि आप इस मंत्र का आप जाप करो, 10 मिनट के लिए रोज जाप किया करो। तो फिर वो बोले कि ये राम, ये जो राम है ये इसमें किसका नाम है, रामचंद्र के लिए है या बलराम के लिए, किसके लिए है। हम कहने नहीं, कोई नाम नहीं है, ये केवल मंत्र है। मतलब अपराध ना हो इसके लिए हमने फिर इतना प्रयास किया हो। तो वो तैयार हो गए, हाँ तब तो ठीक है हम जाप करेंगे। अगर ये भगवान का नाम है तो उनको तो जो ना बहुत नफरत है ना, और हमें उनको बताना ही था। तो हमने उनको यही कहा कि आप इस मंत्र का जाप करो, इसमें कोई जो ना नाम नहीं है, किसी प्रकार का नाम नहीं है, ये मंत्र है। तो प्रभुपाद जी भी जो ना शुरू शुरू में जब प्रवचन दे रहे थे तो उन्होंने यही कहा कि ये जो मंत्र है ये आपको जो है ना चेतना के ऊंचे धरातल पर ले जाती है। तो प्रभुपाद ने भी जो ना कुछ वैज्ञानिक तरीके से कुछ इस तरह से समझाया जिससे कि लोग जो है ना इसका कीर्तन करें, क्योंकि वे भगवत विहीन है ना। तो ये नवा अपराध। फिर प्रभुपाद लिखते हैं दसवां अपराध इस प्रकार है, श्रुति भी नाम है महात्म्य, यहाँ प्रीति रहित तो न रहा अहम मादि परमोन सोपि नाम अपराधिकृत। यदि कोई भगवान के नाम की महिमा सुनने के बाद भी भौतिकतावादी विचारधारा रखता है और सोचता है कि मैं ये शरीर हूँ और इस शरीर से संबंध सारी वस्तुएं मेरी हैं, अहम ममेति, और हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के प्रति सम्मान और प्रेम प्रदर्शित नहीं करता, तो ये भी एक अपराध है। दसवां अपराध ऊंची अवस्था में होता है। दसवां अपराध की अवस्था और ऊंची है, ये अपराध ऊंची से ऊंची अवस्था में होते हैं। पहले से मतलब जैसे उन्नति करते जाते हैं तो पहले अपराध से बचे तो दूसरा अपराध आता है, फिर उससे बचो तो तीसरा अपराध आएगा। तो दसवां अपराध सबसे लास्ट में आता है, क्योंकि इसमें क्या है कि आप भाव की दशा में जब आ जाते हैं तो उसमें भी जो है ना फिर आप अगर भौतिक आसक्ति बनाए रखते हैं, क्योंकि उस समय आपकी भौतिक आसक्ति क्षीण हो जाती है, तो उस समय क्या है ना कि बहुत आसान है उसको खत्म करना, मिटाना, तो उसको फिर भी बनाए रखते हैं भौतिक आसक्ति, है ना। जैसे भाव दशा में कौन थे, भरत महाराज, है ना, तो वो जो है अब कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए उनको जो भौतिक आसक्ति वो बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, लेकिन हरण के प्रति उन्होंने अपनी भौतिक आसक्ति बनाए रखी, है ना। क्योंकि इतनी ऊंची स्थिति में व्यक्ति इतना शुद्ध हो जाता है कि वो जो है ना आसानी से वो आसक्ति के बंधन को छोड़ करके और भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उस समय आसक्ति टू मेंटेन मेटीरियल डिजायर्स, भौतिक आसक्ति बनाए रखना, मतलब आसक्ति आपकी जा रही है, अगर आप करते हैं नाम तो आसक्ति जा रही है, या आप आसक्ति को पकड़े हैं। शुरू में तो स्थिति ऐसी होती है कि आसक्ति से आप जकड़े हैं, आप खुद बंधे हैं, आप छूट नहीं सकते आसक्ति से। लेकिन आगे की स्थिति ये होती है कि आसक्ति आपको नहीं पकड़ती बल्कि आप आसक्ति को पकड़ते हैं। भौतिक कामनाएं जो है ना आपको नहीं पकड़ रही हैं, आपको नहीं बांध रही हैं, लेकिन आप जबरदस्ती उनको क्या है पकड़े हैं, है ना। तो ये जो है ना दसवां अपराध है। तो सबसे अंतिम जो है ये दस अपराध है, दसवां अपराध है। तो ऐसा हमने एक उदाहरण देखा है कि एक सज्जन है, लाइफ मेंबर है, तो उनके जो पिताजी हैं वो इतनी ऊंची अवस्था में, अभी तो उनका शरीर छूट चुका है, कि वो भाव की स्थिति में आ गए और भगवान को भी देखते हैं, छोटे बालक के रूप में वो भगवान का दर्शन करते हैं, और जो है ना भगवान कृष्ण छोटे बालक के रूप में यहाँ दरवाजे से आते हैं और उनके इधर मतलब पसली तक जो है ना चढ़ करके और बंसी बजाते हैं और फिर चले जाते हैं। उनको मक्खन का भोग भी वो लगाते हैं अपनी मानसिक दशा में, और भगवान मक्खन खाते हुए चले जाते हैं। तो हमने पूछा कि आपसे भगवान बात करते हैं? बोले नहीं बात करते हैं। लेकिन समस्या ये है कि वो चाय भी पीते हैं, अब वो कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। अपने पुत्रों में भी आसक्ति है उनकी, वो चिंता होती है उनका लड़का जो ना थोड़ी देर लगा करके अगर आते हैं, टाइम पर नहीं आते हैं, तो उनको लड़के की चिंता होती है, चाय नहीं छोड़ रहे हैं। तो ऐसी दशा में कोई व्यक्ति अगर जो है नाम के अभ्यास से, नाम लिखते थे, नाम जो है ना लिखते थे, तो उन्होंने कई लाख नाम की संख्या लिख दी थी नोटबुक में, तो काफी बूढ़े थे वो। तो भाव दशा में भी जो है ना कोई व्यक्ति अपराध के कारण क्या होता है कि वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो भरत महाराज का उदाहरण है कि भाव दशा में आगे थे, भौतिक आसक्ति वो बनाए रखे हरण के प्रति, और फिर क्या हुआ उनका हाल पता नहीं, वो हरण बन गए। तो आप किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? सज्जन प्रभु कह रहे हैं कि ना, अच्छा प्रश्न है ये, या चर्चा भी बहुत बढ़िया है ये, कि देवता लोग जब आते हैं पृथ्वी में तो उनके चरण जो है पृथ्वी को नहीं छूते हैं, पृथ्वी से ऊपर रहते हैं उनके चरण, उनके शरीर में पसीना भी नहीं आता है, है ना, उनके माला नहीं मुरझाती है, उनके वस्त्र जो है ना वो मैले नहीं होते हैं। तो देवताओं की ये पहचान है, और फिर भगवान तो देवताओं के भी देवता हैं, फिर उनके चरण क्यों पृथ्वी को स्पर्श करते हैं? क्योंकि भगवान मनुष्य लीला कर रहे हैं। इस लीला को समझने में ब्रह्मा जी शिव जी तक भ्रमित हो गए, इंद्र भी भ्रमित हो गए। तो हमें इन लीलाओं को भक्तों के मुख से ही श्रवण करना चाहिए, तभी हम समझ सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के।